डियर फ्रेंड्स, आपको अपने रूप, अपने यौवन, अपने लुक्स पर कितना अभिमान है? यदि अभिमान नहीं है तो सच में सोचिए कि क्या आपने सुंदर दिखने का कुछ विशेष प्रयास कभी नहीं किया? हमारी आज की दुनिया में तो यहां तक कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि किसी भी मनुष्य या वस्तु के मूल में कुछ भी हो, गुण या कंटेंट हो या ना हो, पर यदि वो प्रेजेंटेबल है तो दुनिया में उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो बिक जाएगा। और ये हमारी आज की सच्चाई है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने भागवत की इसी कथा को लेकर के आ रहा हूं, जो इशारा कर रही है कि हम रूप को कितना अधिक महत्व देते हैं और गुण को बहुत कम, जिसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं इस कथा को। शिवरात्रि का समय था। ब्रज बड़ी धूमधाम से इस त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ था। शिवरात्रि की रात को नंद बाबा और बाकी दूसरे गोपों ने सोचा कि क्यों ना इस बार शिवजी की एक विशेष पूजा अर्चना की जाए। बस इस तरह कार्यक्रम बन गया, जैसे आजकल आप लोग अपनी कार और बाइक्स निकाल लेते हैं, तब बैलगाड़ियां होती थी तो वो सबने निकाल ली और सब उस पर सवार होकर पास ही में अंबिका वन की ओर चल पड़े। अंबिका वन की ओर चलते हुए जब सरस्वती नदी आई तो सबने उसमें स्नान किया। स्नान करके पवित्र होने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की अर्चना की। पूजा बिना दान के कैसे पूरी हो सकती है, इसलिए गऊओं का सोने और वस्त्र इत्यादि का दान किया गया। उसके बाद निर्धनों को भोजन कराया गया। सबने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था, इसलिए रात्रि जागरण यानी कि रात भर जागकर भोलेनाथ को याद करना था। इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे बच्चे भी थे, और बच्चों में जब तक उत्साह रहता है तब तक वो पूजा पाठ करते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं। रात भर तो बच्चे क्या जागते, वहीं सरस्वती नदी के तट पर वो सब थक कर सो गए। इसी अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। उसी के डर के कारण लोगों का अंबिका वन में आना बहुत कम हो गया था, और आज तो शिवरात्रि के पर्व पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई थी। अब संयोग या दैव योग कहिए कि कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय वो अजगर भी वहां पर आ पहुंचा। बड़ी सारी भीड़ देखकर उसकी प्रसन्नता बढ़ गई। उसे लगा बहुत सारा भोजन दिख गया है। वैसे तो सबसे पहले सबसे आसान शिकार को पकड़ा जाता है, पर उस खतरनाक अजगर ने ऐसा नहीं किया। अजगर ने सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ लिया और उनको निगलने लगा। नंद बाबा की चीख पुकार सुनकर सब लोग उनकी ओर दौड़े। हाथ में जो भी ला सकते थे ले लिया, लाठियां, झाड़ी, जो भी, सब मिलकर अजगर पर प्रहार करने लगे। पर इस सबका उस विशाल अजगर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नंद बाबा को निगलना रुका नहीं, और फिर तब श्री कृष्ण नंद बाबा की ओर दौड़कर आए और उन्होंने उस अजगर पर अपनी लात से प्रहार किया। कृष्ण की लात लगने की देर थी कि कुछ अजीब हुआ। उस अजगर ने उसी समय नंद बाबा को छोड़ दिया और उसका रूप भी बदल गया। उस अजगर की जगह पर एक तेजस्वी पुरुष खड़ा हुआ था। सारे गोप, नंद बाबा आश्चर्य में इस चमत्कार को देख रहे थे कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे इतना तो समझ में आने लगा कि कोई पुरुष किसी कारणवश अजगर की योनि को प्राप्त हुआ था, पर इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। कृष्ण ने उस तेजस्वी पुरुष से पूछा। वो तेजस्वी पुरुष प्रसन्न दिख रहा था। वो बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कृष्ण आप नहीं जानते हो, पर फिर भी वो कहानी आपको बताना मैं आरंभ करता हूं। इस पुरुष का नाम कभी सुदर्शन हुआ करता था। ईश्वर की कृपा इस सुदर्शन पर कुछ ऐसी हुई कि इसने बहुत सारी विद्या अर्जित की, फिर उस विद्या से धन कमाया। इसके अलावा सुदर्शन देखने में भी बहुत ही सुंदर था। जब इतने सारे गुणों से वो परिपूर्ण हो गया तो उसमें घमंड तो आना स्वाभाविक ही था। एक दिन सुदर्शन जब कहीं जा रहा था तो उसे अंगिरा गोत्र के कुछ मुनि दिखे। मुनि शायद दिखने में कुरूप थे। अपने धन विद्या और सौंदर्य के अभिमान में चूर सुदर्शन ने उन मुनियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुनियों ने उसे प्यार से समझाया कि इस तरह से उपहास करना, मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, परंतु जब आप घमंड में होते हैं तो किसके सुनते हैं। सुदर्शन तो मजाक उड़ाता ही रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, जब किसी चीज की अति होती है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अर्थात उन मुनियों ने सुदर्शन को श्राप दे दिया कि अभी तुम्हारा यह सुंदर रूप छिन जाएगा और तुम अजगर की योनि में चले जाओगे। पल भर में घमंड मिट्टी में मिल गया, उसी मिट्टी में जिसमें सुदर्शन अजगर बनकर रेंगने लगा। उस दिन के श्राप के बाद आज कुछ ऐसा संयोग बना कि ब्रिजवासी इस ओर आए और अजगर को जब भगवान कृष्ण ने छुआ तो वो पाप से मुक्त हो गया। पुराणों की कहानियों में उन गुणों की बात की जाती है जो गुण कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि दूसरे के प्रति सम्मान का गुण, सच्चाई का गुण और पवित्रता का गुण, भक्ति, तपस्या, परिश्रम का गुण। सुंदरता का गुण कितने दिन टिकता है दोस्तों? जो चीज थोड़े दिनों के लिए है उसके पीछे कैसे सारी दुनिया पागलों की तरह भागती है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन वो दिखना चाहता है बाहर से। आप अंदर से सुंदर होने का प्रयास कीजिए ना। विश्वास करें कि जब आप अंदर से सुंदर हो जाएंगे तो ये प्रतिभा पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगी, केवल जवानी तक ही नहीं। देखा दोस्तों, आशा करता हूं कि भागवत पुराण की इस कहानी से हम अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे, बाहर से ही नहीं अंदर से भी। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय हो।